Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke pehle adhyay mein 9वें श्लोक पर भाष्य चल रहा है. 9वें श्लोक का अभ्यास करो. क्या ज्ञो दो वजा विशनीसा वजा ये का भोक्तृभोगार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञाज्ञौ द्वौ वजा वीसनीसा वजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञाज्ञौ द्वा वजा विशनीसा वजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् तो भाष्य कहाँ तक हुआ है? हाँ, तो यस्माद् अजैव भोक्त्रादि रूपा, यहां से है ना? ऐसा ही भगवान माया सदसद व्यक्त वर्जिता, यहां तक हो गया. यस्मात्, जिससे, क्योंकि यस्मात् अजैव अजाहि भोक्त्रादि रूपा, भोक्ता आदिपद से, भोक्त्रा माने भोक्ता, आदिपद से भोग्य और प्रेरक सबको ले लेना है ना. भोक्त्रादि रूपा तस्मात् तत् स्वीकृतस्य मिथ्या सिद्ध वस्तुत्व संभवात् अनंतश्च आत्मा. मूल श्रुति में अनंतश्च आत्मा कहा है ना. वजह एका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, इस पद की व्याख्या. अजैव अजा ही भोक्त्रा आदि रूपा, भोक्ता भोग्य प्रेरक इन सबको. तस्मात् तत् स्वीकृतस्य, अजा को स्वीकार करने पर, अजा ही उन सबको प्रयुक्त है. मिथ्या सिद्ध, इसे क्या सिद्ध हुआ? भोक्ता भी, भोग्य भी और प्रेरक भी, ये तीनों मिथ्या सिद्ध हो गए. तो भोक्ता जीव ये भी मिथ्या सिद्ध हो गया, भोग्य जगत ये भी मिथ्या सिद्ध हो गया और प्रेरक ईश्वर ये भी मिथ्या सिद्ध हो गया. ये वेदांति के अलावा और कोई साहस नहीं करते ईश्वर को मिथ्या सिद्ध करना, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही उनको जीना है, इसलिए ईश्वर को मिथ्या कर दोगे तो फिर वो क्या जिएंगे। अरे भाई, ईश्वर को मिथ्या करने पर भी तुमको शरीर जीने से कोई रोकने वाला नहीं है। मिथ्या ईश्वर भी मिथ्या शरीर को जिलाता रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा? मिथ्या ईश्वर भी तुम्हारे जीवन का भरण पोषण आदि करता रहेगा। ईश्वर को मिथ्या सिद्ध कर देंगे तो हमारा भरण पोषण कैसे करेगा, ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो? जिसका भरण पोषण करेगा वो सत्य है क्या? मिथ्या मिथ्या का भरण पोषण करेगा क्या आपत्ति है? ये हमारा फॉर्मूला तुम लोग गांठ मान लो, मिथ्या प्लस मिथ्या इजगल टू मिथ्या, ये जो फॉर्मूला है उसको पक्का कर लो, मिथ्या प्लस मिथ्या इजगल टू मिथ्या। हम बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं, तुम लोग यदि समझ जाओ तो, लेकिन जितना समझाए तो भी समझते तो है ही नहीं हो, वही कुत्ते के पूंछ की तरह ही अपने पूर्वाग्रह छोड़ते नहीं हो। मैं बीमार हो गई महाराज कहते हो, हम कहते हैं तुम बीमार नहीं हुए हो भाई, तुम्हारा शरीर बीमार हुआ है, इतना तो सत्य बोल दो। इतना भी सत्य नहीं बोलते हो, है? इतना भी सत्य नहीं बोलते है? मैं मोटी हो गई महाराज, फिर वही बात, हम हजार बार कह रहे हैं कि तुम अलग हो, शरीर अलग हो, है? शरीर अलग है, तुम अलग हो। कम से कम इतना तो कह दो कि महाराज मेरा शरीर मोटा हो गया, इतना तो कह दो ईमानदारी से। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर को मिथ्या सिद्ध करने पर मिथ्या संसार को चलाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिथ्या जीवन चलाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथ्या ईश्वर मिथ्या जगत चलाए तो हमको क्या आपत्ति है? चलाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तो मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या, ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है। कौन से कल्याण का? मिथ्या का है। मिथ्या ईश्वर कल्याण का काम कर रहा है, इस अर्थ में कि उस मिथ्या ईश्वर की मिथ्या कृपा होकर जगत मिथ्या का बोध होगा। और क्या, ये उसकी कृपा है। किसका बोध होगा? मिथ्या ईश्वर के मिथ्या कृपा से जगत मिथ्या जगत का मिथ्यात्व निश्चय होगा, अन्यथा मिथ्या ईश्वर की मिथ्या कृपा न हो, मिथ्या जगत का मिथ्या बोध नहीं होगा तो क्या होगा? सत्य बोध होने लग जाएगा। अभी तक तो यही हो रहा है ना, उसकी कृपा नहीं हो रही है इसलिए मिथ्या जगत का सत्य बोध हो रहा है। तस्मात् स्वीकृतस्य मिथ्या सिद्ध वस्तु वस्तुत्व संभवात्, तो सारे जगत के वस्तुओं के मिथ्या सिद्ध होने होना संभव है, और वो मिथ्या सिद्ध होना संभव है इसीलिए आत्मा वो आत्मा अनंतश्च आत्मा, इसलिए वो आत्मा अनंत है। अनंत है माने आगे अनंत की व्याख्या कर रहे हैं स्वयं भगवान शंकराचार्य जी। च शब्द अवधारणे एव, अवधारणे माने ये निश्चय, एव पद अवधारण निश्चयार्थक है, ही पद एव पद ये निश्चयार्थक निश्चय बोधक है, उसी अर्थ में यहां च शब्द का प्रयोग है एव, क्योंकि च शब्द का संस्कृत श्लोकों में कविताओं में या संस्कृत भाषाओं में बहुत जगह प्रयोग होता है, ज्यादा करके प्रयोग करते हैं, तो कहीं कहीं और अर्थ में च शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं निश्चय अर्थ में च च शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं फिर ये च शब्द साइलेंट हो जाता है। च शब्द जो है ना वो पादपूर्ति अर्थम कर देते हैं, च का कोई अर्थ नहीं है, केवल पादपूर्ति छंद पूर्ति के लिए च शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि इतनी अक्षर होनी चाहिए इस छंद में। उस वाक्य के द्वारा जो अर्थ कहना था वो कह दिया, लेकिन छंद नहीं पहुंच रहा है तो क्या करे, तो काव्यकार च लाकर जोड़ देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वहां पर वो च साइलेंट हो जाता है। तो प्रसंग अनुसार इसके अर्थ निकलते हैं, एवार्थ या और अर्थ या अनर्थक। अनंत एव आत्मा, ये च शब्द का अर्थ क्या किया, अवधारणार्थक। च शब्द का अर्थ अवधारणा करने के बाद वाक्य क्या बना, अनंत एव आत्मा, आत्मा अनंत ही है। कैसे होगा, क्योंकि सब अजा के द्वारा परिकल्पित जगत पदार्थ हैं, ये निश्चय हो जाने के बाद सारे कल्पित पदार्थ परिच्छेदक, कल्पित पदार्थ माने परिच्छेदक, आत्मा को परिच्छिन्न करने वाले उपाधि, उपाधि सब कल्पित हो गए। कल्पित हो गया तो क्या हुआ, परिच्छेदक कल्पित हो गए, और परिच्छेदक कल्पित हो गया तब फिर परिच्छिन्न भी कल्पित ही हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, परिच्छिन्नता मिथ्या है, इसलिए आत्मा की परिच्छिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि परिच्छेदक कल्पित है तो परिच्छिन्नता कहां से सिद्ध हो। घट यदि कल्पित मात्र है तब क्या सिद्ध हो गया, घट मिथ्या सिद्ध हो गया, कल्पित घट मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, और कल्पित घट मिथ्या सिद्ध होगा तो घटाकाश क्या सत्य होगा, घटाकाश भी मिथ्या सिद्ध हो गया कि नहीं, फिर सत्य क्या हुआ, महाकाश, महाकाश सत्य सिद्ध हो गया, तो महाकाश अपरिच्छिन्न हुआ कि नहीं, परिच्छेदक यदि सत्य होता तो घटाकाश परिच्छेदक घट यदि सत्य होता, घट के द्वारा परिच्छिन्न हुआ हुआ आकाश घटाकाश भी सत्य होता। परिच्छेदक घट जब मिथ्या है तो मिथ्या परिच्छेदक द्वारा परिच्छिन्न हुआ हुआ मठाकाश वो भी मिथ्या हो गया, तब क्या हुआ, महाकाश अनंत हो गया, समझ गए नहीं, महाकाश अनंत हो गया, घटाकाश अनंत नहीं हो पाएगा, घटाकाश तो परिच्छिन्न होगा, लेकिन घटाकाश परिच्छिन्न सत्य होगा कि मिथ्या होगा, घट यदि सत्य को मानते हो तो परिच्छिन्न घटाकाश सत्य हो जाएगा, परिच्छेदक सत्य है तो परिच्छिन्न भी सत्य होगा, परिच्छेदक मिथ्या हो गया तो परिच्छिन्न भी मिथ्या हो गया, तब अपरिच्छिन्न क्या हुआ, तो आकाश, आकाश क्या हो गया, तो अनंत। लेव जी, इसी हेतु से आत्मा अनंत सिद्ध हो गया, किस हेतु से, जितने भी व्यक्त हुए हुए पदार्थ हैं, भोक्ता भोग्य और प्रयोक्ता, इन तीनों को बनाने वाले तो माया है, अजा है, और वो अजा मिथ्या है, तो फिर ये तीनों मिथ्या हो गए, तीनों मिथ्या हो गए तो फिर आत्मा, मूल आत्मा अनंत, इनके सत्य रहते हुए आत्मा अनंत नहीं हो सकता है, समझ गए ना, परिच्छेदक सत्य होते हुए आत्मा अनंत नहीं होगा। अनंत एव आत्मा, उसका फिर व्याख्या कर रहे हैं, अस्य अंतः, अंत शब्द का अर्थ किया परिच्छेदो, है ना, अस्य माने आत्मना, इस मूल आत्मा का परिच्छेदक, अंत माने परिच्छेद, परिच्छेदो, देशत कालतो वस्तुतो वा, न विद्यता इति। देश को उत्पन्न किया किसने? अजा माया ने। काल को उत्पन्न किया किसने? अजा उसी माया ने। वस्तुओं को उत्पन्न किया किसने? अजा उसी माया ने। और देश को, काल को और वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माया है, और माया वो स्वयं ही मिथ्या है। तब फिर उस देश से परिच्छिन्न होने के चलते आत्मा आत्मा परिच्छिन्न होगा नहीं होगा? यदि देश माया का कार्य न होता और देश पारमार्थिक सत्य होता तो आत्मा भी पारमार्थिक रूप में देश परिच्छिन्न होता, तो फिर आत्मा अनंत न हो पाता। काल भी माया का कार्य न होकर स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता तो फिर काल भी पारमार्थिक सत्य होता, और काल के पारमार्थिक सत्य रहते हुए आत्मा अनंत न होता, क्योंकि काल परिच्छिन्न हो जाता। क्योंकि परिच्छेदक सत्य है तो परिच्छिन्न भी सत्य ही होगा, तब फिर आत्मा की अनंतता में खंडित हो गई, तो अनंत नहीं हो पाता। और सारे तमाम जितने भी परिच्छेदक वस्तुएं हैं वे यदि माया का कार्य न होते तब वो पारमार्थिक होते। अब ये अनंत पदार्थ पारमार्थिक होते तो परिच्छेद्य पारमार्थिक होने के नाते परिच्छिन्न भी पारमार्थिक होता, तो आत्मा अनंत न हो पाता। आसान ये हो गया आत्मा को अनंत होने में, उस आत्मा के परिच्छेदक वह मायाजन्य है, काल भी मायाजन्य है, परिच्छेदक वस्तु भी मायाजन्य है, परिच्छेदक देश भी मायाजन्य है, तीनों मायाजन्य है। तब खुद माया मिथ्या है, खुद माया मिथ्या है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थ सत्य होंगे? मिथ्या हो गए तो परिच्छेद भी मिथ्या हो गया, तब सत्य क्या हुआ? अपरिच्छिन्न वो सत्य है, इसलिए वो अनंत हो गया। ईश्वर, ईश्वरी तो प्रेरक है ना, प्रेरिता तो जीव। हाँ, ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ कौन? जीव। हाँ, माया कारण है, ईश्वर माया का कार्य है। हाँ हाँ, वही तो प्रेरक बनना, इसलिए तो ईश्वर की जो प्रेरकपना है वो भी मिथ्या है। उसके सत्य होते ही आत्मा फिर अनंत न हो पाता ना, ईश्वर से भिन्न आत्मा अनंत कैसे होगा? ईश्वर भी सत्य और आत्मा भी सत्य, दो सत्य तो होंगे नहीं। हाँ, माया खुद मिथ्या होने के कारण माया के जो कार्य हैं उन कार्यों के द्वारा जो परिच्छिन्न होगा वो परिच्छिन्न भी मिथ्या हो जाएगा, तो सब मिथ्या में हो जाएगा ना, तब तो फिर वो ब्रह्म अनंत होगा। अन्यथा इधर ईश्वर सत्य हो जाए और ब्रह्म भी सत्य हो जाए तब तो फिर अनंत नहीं हो पाएगा। मूल श्लोक में, मंत्र में, अजाव एका भुक्ति भोगार्थ भोग्यार्थ युक्ता, तो वो भी अजा होने के कारण माया मिथ्या हो, उसका कार्य मिथ्या हो गए, तब क्या हुआ? अनंतश्च आत्मा, तो मूल आत्मा है वो अनंत हो गया। अनंत होने में हेतु यहां दिया, अस्य अंत परिच्छेदो, किसी भी वस्तु का अंत कहां होता है? परिच्छेदक के आने पर वो वस्तु सीमित हो गया। अंत का मतलब सीमित, लिमिटेशन है ना, तो लिमिटेशन वही परिच्छिन्नता। परिच्छिन्न यानी लिमिटेशन, किसी भी वस्तु की परिच्छिन्नता को उसी को लिमिटेशन कहेंगे, सीमित हो गया वो। तो क्योंकि उस वस्तु का लिमिटेटेड क्या हुआ, परिच्छेद, परिच्छेदक है ना, परिच्छेदक के चलते परिच्छिन्न हुआ। परिच्छेदक नहीं है तो परिच्छिन्न नहीं है, लिमिटेटेड ना हो तो लिमिटेड नहीं होगा है ना, लिमिटेटेड हो गया तो फिर लिमिट हो गया। अब लिमिटेड मिथ्या है तो जो लिमिट भी सत्य रहेगा, मिथ्या हो गया, खत्म हो गई, तब उसको जो सत्य है वो अनलिमिटेड, अनंत माने अनलिमिट। तो तीन चीज लिमिटेटेड हैं, गलती तो नहीं बोला मैंने अंग्रेजी है, लिमिटेटर हाँ, ना लिमिट करने वाली लिमिटेटर, गलती तो नहीं बोला हाँ, सिखाना हो अंग्रेजी के बारे में। तीन ही वस्तुएं हैं, वह है देश, काल या पदार्थ, वस्तुएं। उसी को संकेत किया भाष्यकार ने, परिच्छेदो देशतः कालतो वस्तु तो वह। और ये तीनों लिमिटेटर न विद्यते, स्वरूप से नहीं है, स्वरूप से नहीं है मतलब उसकी मां ही जब बंध्या है, उसकी मां ही बंध्या है माया, बिना बाप के उसने बच्चा पैदा किया तो फिर वो पैदा हुआ बच्चा, बिना बाप के पैदा हुआ बच्चा क्या वो बच्चा होगा? तो कल्पना से तुम किसी को भी बेटा बना लो, आजकल करते हैं ना, बिना बाप के बच्चे होते ही है, अडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं ना, तो वो क्या है, बिना बाप के बच्चे हैं, बिना मां के बच्चे हैं वो, है कि नहीं है? जिससे पैदा हुए हैं वो तो, उसको तो वो अपना बाप अपनी मां मान ही नहीं रहा है ना। तो विश्वरूपो विश्वम अस्य एव रूपम इति, विश्वरूप परस्य अविश्वरूपत्वात्, और उससे अन्य जो है अविश्वरूप है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, वो क्या है, अविश्वरूप है। तो उससे अलग सभी अविश्वरूप होने के कारण मिथ्या है, और वह विश्वरूप है, अनंत है और साथ ही विश्वरूप है।